जो ये 16 दिवसीय कैंपेन है, ये 25 नवंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर तक चलता है. 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स है, और 10 दिसंबर जो है वो मानवाधिकार दिवस है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं. हर साल ये पूरी दुनिया में कैंपेन मनाया जाता है, और जो सेक्रेटरी जनरल का यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स कैंपेन है, वो इससे जुड़ा हुआ है. मुझे बहुत खुशी हुई हो रही है आपको बताते हुए कि यूएन वुमेन और बाकी साथी यूएन संस्थाओं के साथ हमने आज एक मेट्रो कैंपेन को लॉन्च करा है, जिसमें कि दिल्ली की एक येलो लाइन को हम लोगों ने ऑरेंज करने का प्रयास किया है. ऑरेंज रंग जो है वो ग्लोबली हिंसा को ख़त्म करने के लिए चुना गया है. ये एनर्जी का और पॉजिटिविज्म का प्रतीक है, इसलिए आज से लेकर के एक महीने तक हम लोग येलो लाइन पर एक ट्रेन को चला रहे हैं, जिसमें कि महिला हिंसा को लेकर के और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और विशेषकर 112 जो एमरजेंसी इंटीग्रेटेड नंबर भारत में लॉन्च हुआ है, उसके लिए हम लोग आम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. इसके साथ ही हम लोग ट्रांसपोर्ट में एयरलाइंस के साथ भी कैंपेन के दौरान जुड़ेंगे, जिसमें खास करके हमारी इस बार पार्टनरशिप स्पाइसजेट के साथ है, जिनके साथ हम लोग तमाम उनकी जो फ्लाइट्स हैं उसमें महिला सुरक्षा को लेकर के मैसेजिंग करेंगे, और पायलट्स के द्वारा उसमें अनाउंसमेंट भी होगा. इसके साथ ही जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, जो युवक और युवती हैं, उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम 16 दिनों के बीच में प्लान्ड हैं. उसमें हम लोग रेडियो नशा के साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हैशटैग उसका है कौन सी बड़ी बात है. हर दिन हम लोग लिसनर्स के साथ अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करेंगे. आप क्या पहनेंगी, कब बाहर जाएंगी, सुबह जाएंगी, नहीं जाएंगी, 20 साल की लड़की है, माँ कहेगी 7 साल के बिट्टू को साथ में ले जाओ, तो इस तरह की जो मानसिकता है और इस तरह के व्यवहार हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. न केवल कि उनका क्या असर पड़ता है, लेकिन उनको बदला कैसे जा सकता है, और उस बदलाव में जो पुरुष हैं और जो लड़के हैं वो इस चेंज का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी. साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि, और मैं मोबिलिटी के एग्जाम्पल से जोड़कर एक और उदाहरण देना चाहूँगी, कि एक हम लोगों ने जब निर्भया केस हुआ था उससे तुरंत पहले और उसके तुरंत बाद एक हम लोगों ने बेसलाइन अध्ययन करा था दिल्ली में, और उसमें करीब 4,500-5,000 लोगों से बातचीत हुई थी, और उसमें निकल के आया कि जो पब्लिक स्पेस है और ख़ास करके जो ट्रांसपोर्ट के स्थल हैं वहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा हिंसा अनुभव करती हैं, ख़ास करके अगर हम पब्लिक स्पेसेस की बात कर रहे हैं. तो इस साल हम लोग ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और मेट्रो के साथ तो ये साझेदारी है ही.
तो दक्षिण एशिया में खासतौर पर भारत को अगर हम लें, तो आंकड़े क्या कहते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है ये कितनी ज़्यादा व्याप्त है?
तो जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का मुद्दा है, ये मुझे लगता है कि ग्लोबल है. तो ये हर जगह की कहानी है, हर देश की कहानी है, हर राज्य की कहानी है, हर घर की कहानी है. तो अगर ग्लोबल डेटा देखें तो हर 3 में से एक महिला ने कभी न कभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की हिंसा को एक्सपीरियंस किया होगा, और ख़ास करके ये जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में इंटिमेट पार्टनर वायलेंस, कि जो आपके करीबी हैं, जिनसे आपका रिश्ता है, खास करके चाहे वो आपके पार्टनर हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, या आप जिनके साथ रह रहे हैं, वो हिंसा सबसे ज़्यादा है. और अगर हम लोग भारत का आंकड़ा देखें तो हम लोग उसके काफ़ी क्लोज हैं. जो NFHS का लास्ट राउंड हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4th राउंड, उसमें भी यही आंकड़ा निकल के आया कि लगभग 31% जो महिलाएं हैं जो कभी ना कभी जिनकी शादी हुई थी, जिस जो किसी वैवाहिक रिश्ते में थी, उन्होंने किसी न किसी प्रकार की हिंसा को एक्सपीरियंस करा. तो आंकड़े भारत के पूरी दुनिया से कुछ अलग नहीं हैं, लगभग उसी के बराबर हैं. और मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि सामाजिक और कल्चरल और बाकी जो परिपेक्ष है उसको ध्यान में रख करके हम देखें तो कुछ स्पेसिफिसिटीज़ हो सकती हैं जो कि दक्षिण एशिया के लिए या भारत के लिए जो निकल के आए। जैसे खास करके अगर हम देखें तो डाउरी का, जो दहेज का मुद्दा है, वो एक बड़ी समस्या है। बाल विवाह का अगर मुद्दा हम लोग उठाएं, वो अफ्रीका के भी कई देशों में है, लेकिन हमें पता है कि दक्षिण एशियाई देशों में ये एक विशेष समस्या है। या एक और में अगर बहुत ही विकराल एक फॉर्म ऑफ वायलेंस अगर हम देखें तो एसिड अटैक्स, वो भी दक्षिण एशियाई देशों में की एक अलग कहानी कहते हैं। और उसका जो लिंक है वो इस चीज़ से भी है कि यहाँ पर जो एक पेट्रियार्की या पितृसत्तात्मकता की जो हम बात करते हैं किन अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। तो कुछ हैं स्पेसिफिक फॉर्म्स जो कि एरिया स्पेसिफिक हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा तो ग्लोबल है और नेशनल भी है।
तो आपको क्या लगता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए पुरुषों की जो मानसिकता है वो बदलने कितनी ज़रूरी है? जैसे ही फॉर शी कैंपेन यूएन वुमेन ने शुरू किया था, उससे कितना फर्क पड़ा और आगे क्या आपका करने के प्रयास हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लड़कों और पुरुषों से, और मैं बाकी जेंडर्स को भी इसमें शामिल कर रही हूँ, उनके साथ बात करना, उनके साथ काम करना, उनकी सोच को, उनके व्यवहार को बदलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए यूएन वुमेन ने ही फॉर शी कैंपेन की शुरुआत करी थी, क्योंकि जो जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा है या हिंसा को ख़त्म करने का मुद्दा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी, उसकी जिम्मेदारी सभी की है। तो उस नज़रिए से भी और इस नज़रिए से भी कि एक मेरा ये अधिकार है, ना केवल मेरा मानव अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं एक डर रहित और हिंसा रहित जिंदगी जी पाऊँ। तो उसे ध्यान में रखते हुए अगर हमें लड़कों और पुरुषों के साथ काम करना है तो बदलाव घर से करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से बदलना पड़ेगा। वो फिर चाहे काम का बंटवारा हो, कौन क्या करता है, कौन कब कहाँ जाता है, वहाँ से शुरुआत करके मानसिकता और व्यवहार को बदलना पड़ेगा। और ये कॉम्प्लेक्स है, इतना सरल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है।
अगर पॉलिसी लेवल की बात की जाए तो उस दिशा में यूएन वुमेन के क्या प्रयास हैं?
पॉलिसी के मुद्दे पे एक बड़ा जो सबसे पहला जो मैं बात करनी चाहूँगी वो ये कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि आंकड़े और डेटा जिसे हम कहते हैं, या रिसर्च, एविडेंस रिसर्च, जो आंकड़े अभी हमारे सामने हैं वो रिपोर्टेड केसेस हैं। रिपोर्टेड केसेस के साथ साथ हमें पता है कि प्रेवलेंस कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन महिलाएं डरती हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, अगर पता भी है तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, और जो एक्सेस टू जस्टिस की पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। तो सही आंकड़े जानना और जो आंकड़ों का मैनेजमेंट जो डेटा सिस्टम्स करते हैं उनका क्षमता वर्धन करना, ये एक बड़ा एरिया है। हम लोग दो चीज़ों की बात करें, एक की जो पूरी चर्चा हुई व्यवहार की और सब चीज़ों की, कि हम वायलेंस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो जो इसका, इस सिक्के का दूसरा पहलू है वो ये है कि रिस्पॉन्स क्या हो। मान लीजिए कि अगर मैंने, मुझे हिंसा का अनुभव हुआ तो मैं कहाँ जाऊँ? तो हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है एसेंशियल सर्विसेज का, कि कोई भी जो महिला हिंसा की शिकार हैं या जो सर्वाइवर हैं और उन्हें सर्विसेज की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे वो लीगल सर्विसेज हों, चाहे वो काउंसलिंग सर्विसेज हों, तो एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज उनके लिए ज़रूरी हैं। तो ग्लोबल स्तर पे भी WHO और UNODC के साथ UN Women ने एक एसेंशियल सर्विसेज का पूरा पैकेज बनाया है, और भारत में भी महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिल करके हम लोग वन स्टॉप सेंटर्स को राष्ट्रीय लेवल पर और अलग अलग राज्यों में भी हम लोग वन स्टॉप सेंटर्स के साथ काम कर रहे हैं। जो तीसरा है वो है कानून, और हम लोग कानून के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि कार्यस्थल पर होने वाली जो लैंगिक हिंसा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, उसके ऊपर यूएन वुमेन भारत में काफ़ी काम कर रहा है। हम लोग सरकारों के साथ तो काम करते ही हैं, लेकिन हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ भी इसमें जुड़ करके और मिल करके काम कर रहे हैं। तो जो लॉज, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, वो हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं।